साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब पहले जाया तेरे सहारे। अब तो निकला अकेले बाबा, ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। सपनों की उड़ाने तुमसे जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।
ओम शांति। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं, मैं जलने वाला दीप नहीं, मैं जलने वाला परवाना हूं। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं, आशाएं सब पूरी होगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं जीवन को सुंदर बुनता कर्मों का ताना बाना हूं, जो बंध ना सके वह धारा हो, जो उठ ना सके वह पारा हो। मानवता प्रेम शांति के हित मैं महाक्रांति का नारा हूं, जिसको ना रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हो। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं, सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे का ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तरह ना हो। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं, मैं जलने वाला दीप नहीं, मैं जलने वाला परवाना हूं। कभी सुख सुविधाओं के मार्ग को नहीं चाहता, राजपथ नहीं ज्ञानपथ। वैभव उसे लुभाते नहीं, वैराग उसे प्रिय है। संसार के भौतिक सुख सुख नहीं लगते, विष लगते हैं। मैं महाक्रांति का नारा हूं। उसकी चाह उसे पाने की है जो असंभव है, और इस मार्ग में छोटी छोटी आशाएं टूटेगी और उन छोटी आशाओं का टूटना ही उस हृदय को चोट पहुंचना ही उस महाक्रांति की ओर ले जाता है। छोटी आशाओं को टूटना ही होगा यदि महानता के पथ पर आगे बढ़ना है तो। इसलिए कवि कह रहा है, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं, जिसको ना रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना, मिट जाऊं ऐसा बीच नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं, सबकी मनचाही जो करे वह तांबे की ताबीज नहीं। राजा का मार्ग कठिन मार्ग है, प्रजा का मार्ग आसान है। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं, जो बंद न सके वह धारा हो, जो उठ न सके वह पारा हो। आशाएं सब पूरी होगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। आशा पॉजिटिव शब्द है, परंतु उसी आशा के साथ इच्छाएं जुड़ जाती है तब वो निराशा बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी आशाओं को टूटना ही होगा, उस पीड़ा से और दर्द से गुजरना ही होगा, क्योंकि वो आशा है जिसे हमने इंग्लिश में होप कहा है, वो होप के वेश में एक्सपेक्टेशंस है, इच्छाएं है, स्वार्थ है। मार्ग कठिन है। 14 बरस राम वनवासी, वनवाह का मार्ग है, वनवास का मार्ग है। इसलिए आज की इस मुरली में बाबा ने लगाव, मोह, मेरापन, गृहस्थीपन, ये बहुत बड़ी बाधा है। ये जो तूफान चलता है, कौन सा? व्यर्थ का तूफान। मन में तूफान उठते हैं, कौन से तूफान? व्यर्थ के। व्यर्थ अर्थात उसमें होता है क्या, क्यों, ये इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों बोलते, ये कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ज्ञान में हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं ड्रामा, भक्ति में भी ऐसा ही एक शब्द प्रयोग होता है, कौन सा? भावी, होनी, नियति, फुल स्टॉप, कोई वेस्ट नहीं। अभी राम राजा बनने वाला है और रातों रात पर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, एक ही शब्द। लक्ष्मण क्रोध में है, वो प्रतिशोध लेना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है राजा के खिलाफ, परंतु श्री राम क्या कहते हैं, इसमें न कैकेयी का कोई दोष, न दशरथ का कोई दोष, न मंथरा का कोई दोष, ये मेरी नियति है। दोष किसी का ही नहीं है, ये मेरी नियति है। और उससे भी आगे नियति नहीं, मेरा भाग्य है कि मैं वन में जाऊंगा, ऋषियों के सानिध्य में मुझे ज्ञान अर्जन होगा, ज्ञान प्राप्ति करूंगा। एक ये मार्ग है, और दूसरा मार्ग जो भक्तों ने ढूंढा, जो प्रभु की इच्छा, ये उसी की इच्छा है कि मैं यहां नहीं रहूं, मैं वहां जाऊं। मेरा स्थान यहां नहीं, मेरा स्थान वहां है। ये सब क्या है? व्यर्थ। कितना समय बर्बाद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? इनको समझना चाहिए। हाउ, वाई, वॉट, सब व्यर्थ को जन्म देता है। वाई, संडे की मुरली में भी था, जो बीत गया उसके लिए वाह वाह, वाई नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, बाबा को कौन सा फुल स्टॉप ज्यादा पसंद है। पर वो लगता कहाँ है? हमारे एक एक वाक्य में कितने प्रश्न चिन्ह है। क्यों, क्या, इसी में मन डूबा रहता है। उसका कोई दोष ही नहीं है, ये तुम्हारी नियति है। तो तूफान चलता है कौन सा? व्यर्थ संकल्पों का। और इस मुरली में दो कारण बताए तूफान के, कौन से, कौन सा कारण बताए, कौन सा कारण बताए? एक तो लगाओ, एक तो मेरापन, एक तो गृहस्थीपन, एक तो लगाओ के भी दो रूप, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल लगाओ तो समझ में आता है, पर सूक्ष्म लगाओ के लिए सूक्ष्म आत्मिक स्थिति चाहिए, उसके सिवा वो समझ में नहीं आएगा। स्थूल लगाओ तो बहुत सारे जो दिखते हैं, जो दिखाई देते हैं, पर सूक्ष्म लगाओ मन की गहराई में। और बच्चे क्या करते हैं? चतुराई भी बहुत करते हैं, ऊपर से कहते हैं तेरा और फिर ले लेते हैं, वाणी में कहते हैं तेरा और कर्म से वापस छीन लेते हैं। तो मुख्य एक कारण जो है वो है लगाव, वो है मेरापन, गृहस्थीपन छोड़ो, समर्पण, मेरा नहीं तेरा। परंतु मुरलिया पढ़ पढ़ के हम भी बहुत होशियार हैं। कहां से ज्ञान अर्जित किया? उसी से, उसी ने सिखाया। होशियार किसने बनाया? ज्ञान में भी और ज्ञान का उल्टा प्रयोग करने में भी, ज्ञान की श्रीमत की उल्टी गंगा बहाने में भी हमसे अधिक होशियार कोई नहीं है। क्योंकि संसार के लोगों को तो श्रीमत पता ही नहीं है, तो वो क्या उसका कुछ करेंगे। ज्ञानियों के पास बहाने, होशियारी ज्यादा है। हर श्रीमत का युक्ति युक्त काट हमारे पास है, जैसे जहर का काट होता है ना, एंटीडोट, वैसे ज्ञान युक्त योग युक्त। अगर कोई कहे कि तुम अमृत वेला नहीं दिख, तो हम इतना आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि इस समय मैं माया के वश में हूं। हमारे पास पावरफुल उत्तर है, हर चीज का तोड़, हर चीज की काट हमारे पास। और कहां से सीखा? मुरलियों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं? चतुराई करते हैं। यह है सारा लगाव ही, सूक्ष्म स्थूल, यह है सारा मेरापन ही, यह है सारा गृहस्थीपन ही। ट्रस्टी कहते हैं, ट्रस्टी पर है नहीं। जैसे बॉर्डर पर एक पुलिस हर रोज एक व्यक्ति को पकड़ता है जो बाइक लेकर जा रहा है, और उस ऑफिसर को ये पक्का विश्वास है कि ये स्मगलिंग करता है। वो उसको पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? तो रेत की बोरिया। वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं, मैं खोल के देखूंगा। खोलता है और वापस पूरा रेत खोद खोद के देखता है, कुछ नहीं मिलता है। और ऐसा एक दिन नहीं, रोज वो वही व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल लेकर। बॉर्डर पर उसे रोका जाता है, कहता है तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, रेत की बोरी है, देख लो। फिर से हर दिन वो ऑफिसर चेक करता है, उसे पक्का विश्वास है कि कुछ ना कुछ गन्स है, कुछ तो कुछ स्मगलिंग करता है, गोल्ड है, कुछ तो है, सस्पिशियस है, फिशी। परंतु कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो ऑफिसर रिटायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। एक दिन किसी होटल में बैठा है, तब वही व्यक्ति दिखता है उसको। वो कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम स्मगलिंग करते हो, पर कभी पकड़े नहीं गए, पर मुझे पक्का विश्वास है। अब मैं रिटायर हो गया, अब तो बता दो तुम स्मगलिंग करते किसकी थे? मोटरसाइकिल। रेत की स्मगलिंग थी नहीं, स्मगलिंग किसकी थी? मोटरसाइकिल की। चतुराई। उसी तरह बच्चे भी क्या करते हैं? चतुराई। तो व्यर्थ का जो तूफान चलता है, उसका सूक्ष्म कारण क्या है? हमारी आसक्तियां, हमारा लगाव, हमारा चिपकाव। वो किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी घटना से हो सकता है, किसी के साथ से हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा श्रीमत का उल्लंघन, द ब्रीच ऑफ श्रीमत। जब जब श्रीमत तोड़ोगे, जब जब मर्यादाओं को तोड़ोगे, तब तब व्यर्थ चलेगा। इसलिए कल भी कहा था, सुबह सुबह टाइम टेबल बना लो, ये करना है। कम से कम स्थूल जो बात है वो तो करनी है। अगर उसको भी तोड़ा तो फिर क्या चलेगा? व्यर्थ चलेगा। और व्यर्थ बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। ट्रीटमेंट क्या है? मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। आपने एक शब्द प्रयोग किया है, शुद्ध प्रवृत्ति। पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति होगी। किसकी पवित्र प्रवृत्ति? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, ये चार बातें। वही बोलो जो बाप ने सुनाया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए व्यक्त मूल्यों का यह अध्ययन बहुत बहुत आवश्यक है। कल हमने देखा था कि संसार की आत्माएं पढ़े, पर क्या ब्राह्मणों ने पढ़ के पूरा किया है क्या? संसार की आत्माओं के एक एक आत्मा के हाथ में किताब। कल विजन क्रिएट किया ना, ऊपर अव्यक्त मुरली, बड़ी सी आकाश में ऊपर से किरणें आ रही है, स्टेज 2, स्टेज 3, एक एक आत्मा के हाथ में बुक आ गई, एक साथ किताब पढ़ रहे हैं। आज 3 मुरली है, 14 मुरलियां बाकी है 5 दिन में। और फिर श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, व्यक्त मुरली से पोषण हो रहा है और परमात्मा शक्ति से विश्व परिवर्तन। और फिर क्या देखा? हर एक का हृदय एक दूसरे से मिल रहा है, परमात्मा प्रेम की तरंगे विश्व में फैल रही है। और फिर हमने एक स्टार देखा और उससे किरणें नीचे, वही मार्गदर्शक है, परमात्मा बोल, परमात्मा शब्द, परमात्मा वाणी। ये परमात्मा ज्ञान ही प्रकाश है। और लास्ट में प्रार्थना की, ये वाणी हर एक को ये फैले और हर दिल को छू जाए। ये विश्व की आत्माओं के लिए किया था, ये विश्व 820 करोड़ आत्माएं, पर उससे पहले क्या ब्राह्मणों ने ये काम कर दिया है? तो जो सुना वो सुनाना, यह है वाणी की शुद्ध प्रवृत्ति। जो बाप के संकल्प तुम्हारे, जो बाप के बोल तुम्हारे, जो बाप के कर्म, जो बाप के संस्कार वो तुम्हारे। संपर्क, कर्म, कर्मयोग, कर्म में क्या न्यारा और प्यारा चरित्र, तुम्हारे कर्म क्या बन जाए चरित्र। तो बस ये इतना ही काम है। अगर व्यर्थ से मुक्त होना है तो मेथड क्या है, इन लगाव को चेक करो, सूक्ष्म लगाव कहाँ कहाँ है, किस व्यक्ति में है, किस वस्तु में है, किस इच्छा में है, कौन सी आशा में है, किस एक्सपेक्टेशन में है, कौन सा लालच है। लालच अगर इच्छाएं हो तो वो एक ही इच्छा हो, विश्व कल्याण की, प्रभु प्रेम में खो जाने की, उसकी सेवा की, यही वास्तविक समर्पण है। और समर्पण का पथ बहुत कठिन पथ है, काटे ही काटे हैं उसमें, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, लगाव नहीं, इन सबको हटाओ। बहुत पीड़ादायक और एडिक्टिव है सबके सब। पहले हम उनको पकड़ते हैं और बाद में वो हमको पकड़ लेते। नदी बह रही है, उसमें किसी ने देखा शॉल है, काली काली शॉल, सोचा मिल रही है फ्री में, कूद गया पकड़ने। फिर लोग कहते अब बाहर आओ, तो मैं कैसे बाहर आऊं, ये शॉल है ही नहीं, ये भालू है, अब उसने मुझे पकड़ लिया है, पहले मैं उसे पकड़ने गया, अब वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, अब क्या करूं। शूद्र की चीज को अपना मानना, ये है महापाप, और ये है ठगी, और ये है तीसरा धोखा। मुरली में क्या है, महापाप, ठगी और चोरी। जो मेरा है ही नहीं उसे अपना मान लिया है, और जो मेरा है नहीं और जिसको मैं अपना मानता हूं वो मेरे में क्या करता है, बेचैनी लाता है। एक ही मुरली में कितने वाक्य है और कितनी गहराई है। इसलिए गहराई में जाओ, घबराओ नहीं। वे भी था ना, प्रश्न भी था, ये जो तूफान उठ रहे हैं और हर मन में ये तूफान है, इसलिए क्या करना है, श्रीमत को समझना है, पूरा जीवन समर्पित करना है एक बात के लिए, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज श्रीमत, लॉस क्या है, रूल्स क्या है, कायदे क्या है, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है, यह हर व्यक्ति का प्रश्न है। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ कर लिया, सब बहुत अच्छा, पर मुझे करना क्या है, दैट्स द मेन थिंग। श्रीमत मर्यादा है, कितनी मर्यादा है बताओ, ए फॉर अमृतवेला, ब्री फॉर ब्रह्मा भोजन, ड्रेस कोड। जल्दी, एक मिनट के अंदर 26 मर्यादा बतानी है, विद इन वन मिनट। इतना धीरे, फास्ट। एक मिनट के अंदर 26 मर्यादा है बतानी है। कितनी बार रिवाइज हो गया है? आगे। जल्दी, दिव्य गुणों की धारणा। नेक्स्ट, जर्नी टू मधुबन। अगला। अच्छा, ये इधर पूरा रेडी है। कीपिंग चार्ट। अगला, जल्दी बताओ, ये यहां तक रख रहे दिख रहा है ना सबको? एफ फॉर अगला, मुरली क्लास। अगला, नो की लिस्ट। अगला, अगला, प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य क्या था? अगला, अभी क्या सुना? ट्रस्टीशिप। अगला, रिलेशनशिप, संबंध, संबंधों में डिटैचमेंट। अगला, साइलेंस, सॉलिट्यूड। अगला, ट्रैफिक कंट्रोल। अगला, मनी, जो भी यज्ञ के पैसे, यज्ञ के साधन, वस्तुएं, उनको व्यर्थ ना गवाना। अगला, चाहे पानी हो चाहे फैन हो। और कैमरा घुमाओ, सब तरफ आप घुमाते हो, अभी इनकी तरफ हम घुमाएंगे। तो यहां बैठे और कमरे का फैन किस किस का चालू है? नहीं, जो अकेले, तो कोई भी वेस्ट नहीं करना। अगला, जल्दी, कहां थे? सेंटर, बी, डब्ल्यू, एक्स, एक्सरे, वाई, योगा ट्वाइस और जेड, जील। तो ये याद करके रखना है। याद तभी होगा जब दूसरों को सुनाएंगे। हजारों बार यहां रिवाइज हो चुका है। माइंड में मेंटली इमेजिन, रिवाइज एंड टीच। क्या कहा? जो बाप से सुना वो दूसरों को सुनाओ, बाप से जो श्रीमत सुनी वो दूसरों को सुनाओ। ये है प्रवृत्ति। तो ये चारों ही प्रवृत्ति है, ये है ट्रीटमेंट उस वेस्ट से अगर फ्री होना है। नहीं तो मन में निरंतर तूफान चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। उस लगाव को विष की तरह देखना है। ये लगाव मेरे दुख का कारण है। उस लगाव के न्यू पॉइंट्स निकालने हैं कि ये जो संबंध है किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, जो लगाव है, इस लगाव से मुझे क्या नुकसान हो रहे हैं। इसके कितने पॉइंट्स निकालने हैं? रोज 5 नए पॉइंट्स अमृत वेला। कि इससे तो दुख ही मिल रहा है, इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, इससे मेरा मन अस्थिर हो रहा है। स्थित प्रज्ञ बनना है ना, जो स्थिर है। राजमहलों में भी स्थिर, वनवास में भी स्थिर, स्तुति में स्थिर, निंदा में भी स्थिर, तो कहीं जाके होगा ये काम। तो लगाओ गृहस्थी। ये गृहस्थी जो है ना, बड़ी दुखदाई है जब तक वो ट्रस्टी नहीं हो जाता है। गृहस्थी अर्थात सब मेरा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस हम ही इतने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, वही संसार है, विश्व के बारे में कब कहाँ सोचता है, कुछ भी नहीं। ये गृहस्थी डेंजरस है, दलदल। तो इनके निगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है, उसके कितने पॉइंट्स निकालने हैं रोज अमृत वेला? दूसरों के लगाओ के नहीं, हमारे लगाओ के, और रोज नए पॉइंट्स निकालने। एक तो ये काम और दूसरा काम था श्रीमत को रिवाइज करते रहना है। तो अभी जो सुनाया, हर दिन किसी को पूछेंगे एकदम रैंडम अचानक, एनी टाइम, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, वो भी याद करके रखना, ठीक है? एनी टाइम। इस मुरली में समर्पण की भी बात की है, 10 समर्पण के सूत्र विथ एक्शंस, करके रखना रेडी, ठीक है? कौन कराएगा? आशीष भाई, आज नहीं कल करा लेना, पहले हिंदी में करा लेना फिर नेपाली में भी करा लेना। तो ये है मर्यादा। तो ये थी पहली मुरली। तो इसमें दो तीन बातें और थी प्रवृत्ति वाली। क्या कहा? सारे दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। कल भी हमने देखा था शुद्ध संकल्प कहां से मिलेंगे, सुनना नहीं है केवल, सुनते सुनते स्वरूप बनना, सुनना समाना स्वरूप बनना। परमधाम की बात आई तो परमधाम में चले जाओ, सतयुग की बात आई तो सतयुग में चले जाओ। मुरली सुनते सुनते केवल लोकेशंस लिखने हैं, बस पॉइंट्स लिखनी नहीं है, केवल लोकेशंस। कौन सा है दिलवाड़ा, कौन सा है प्रदर्शनी, कौन सा है सतयुग, कौन सा है परमधाम, दैट्स इट। वो सब बाकी का अंदर का छोड़ो। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बन, हर कर्म करना कमल समान न्यारा और प्यारा रहना। कर्म हमें टच ना करे, कर्म किया और डिटैच्ड, योग किया और डिटैच्ड, डिटैच्ड हर चीज में डिटैच्ड। जो चिपक जाते हैं और वही अच्छा लगता है, ये किया अभी यही यही बार बार करूं तो बंधन हो गया। कर्म किया आगे बढ़ जाओ, कर्म किया आगे बढ़ जाओ, आए भट्टी की मधुबन में आगे बढ़ जाओ, डिटैच्ड। सेंटर में गए सेवा की, डिटैच्ड। भाषण दिया, डिटैच्ड, उस भाषण से भी डिटैच्ड, इस भाषण से भी अटैच नहीं होना। जिसको सुना उस व्यक्ति से भी डिटैच्ड। अटैचमेंट जहां है वहां पर दुख चालू हो जाता है, हर चीज में डिटैच्ड। अधीनता हो जाती, गुलामी चालू होती है, स्लेवरी चालू हो जाती है, बॉन्डेज आ जाता है। वही व्यक्ति अच्छा लगता है, उसका ही अच्छा लगता है, ये भी बंधन है, ये भी अटैचमेंट है। मार्ग अकेले का ही है, ये भूलना नहीं है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। मरना भी अकेले, जीना भी अकेले, अकेले 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 का मार्ग है। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप में करना। चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। संपर्क में प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं, संपर्क में आते सदा सर्व को जो बाप, सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। हर आत्मा को बाबा से जोड़ना है, ये सृष्टि की, ये पूरी सृष्टि जो है। इसलिए 11 पॉइंट सकाश है जो रोज कंपल्सरी करना है, और कल जो बताया मेडिटेशन वो रोज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पांच तत्व जो भी 55 पॉइंट्स, वो कंपलसरी करते रहना, करते रहना, करते रहना, सोते सोते, उठते उठते, कभी भी। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति, लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति संन्यास, वो नहीं, पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति। तो ये थी फर्स्ट मुरली। दूसरी मुरली, इसमें बहुत सारे सोमान ही सोमान दिए है बाबा ने, याद दिलाया है कौन हो तुम, कौन हो, पूर्वज हो। बाप दादा ने हमसे कहा है कि तुम सबके बाप दादा हो। बाप दादा ने हमसे क्या कहा? तुम सबके बाप दादा हो। पूर्वज में ब्रैकेट में बाप दादा, तुम पूर्वज हो, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, सबके, किसके, जो धर्म पिता है उनके भी, जो सृष्टि की आत्मा है उनके भी, सबके। बहुत पुराने हो तुम, वो सब नए नए हैं, दूसरा पूजनीय तुम हो, तीसरा गायन योग्य तुम हो। तुम्हारा ही गायन है, तुम्हारी ही पूजा हो रही है। संसार की आत्माओं को भक्ति करने में बहुत रस आता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी बहुत है। क्योंकि भक्त क्या करता है, समर्पण कर देता है, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम ही गायन योग्य, तुम्हारा गायन हो रहा है, तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम पूज्य हो, तुम सृष्टि वृक्ष के कौन हो, बीज अर्थात मूल तना, ये सृष्टि का बीज तुम यहां हो, मूल तना तुम हो, ये शाखाएं है आत्माएं, इसके लिए इनका पालन पोषण किसको करना है, तुमको, तुम्हारा। ये नहीं समझो कि तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे हैं, तुम्हारे संकल्प कमरे में बंद करके जो संकल्प किए केवल तुम्हारा, तुम्हारा प्रत्येक संकल्प विश्व की आत्मा तक पहुंच रहा है, क्योंकि तुम बीज हो, तुम तना हो, तुम जड़ हो, तुम मूल आधार हो, आदि देव द्वारा आदि रचना हो, ये मुरली में बिखरे हुए समान है सारे। हर कर्म का आधार तुम हो, कुल की मर्यादा तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो, कुल का आधार तुम, रीति रस्म का आधार तुम, कर्म का आधार तुम। तुम्हारे कर्म इंडिविजुअल कर्म नहीं है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तुम्हारे संकल्प व्यक्तिगत संकल्प नहीं है, सार्वजनीन है, सार्वलौकिक, सार्वकालिक, सर्वकालिक संपर्क। हर कर्म का आधार तुम हो, हर कुल की मर्यादा तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो, तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो। तुम्हारे से ही आधार, तुम्हारे से ही उद्धार होगा लोगों का। तुम ही इस भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान का समान हो। जो महान व्यक्ति होता है, जो पूर्वज होते हैं, जैसे भारत की लेखा, भारत की गीता, भारत की वस्तु, भारत के चित्र, इसका आकर्षण है, भारत केंद्र है सभी का। क्यों? क्योंकि महान ऋषियों की भूमि है। वो ऋषि कौन है? हम, हमने ही तपस्या चालू की भारत में, हमने ही शास्त्र लिखे, हमने ही भक्ति भी चालू की, सब कुछ, सबका आधार हम है। ये भी सोचा जाए किसके लिए कह रहे, मैं तो ऐसा कुछ दिखता नहीं मुझ में, ये से मैं तो अपनी बस अपने डिपार्टमेंट की सेवा किया करता हूं, ये सब क्या है, अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन। भक्ति शुरू की इसलिए भुगतो। सृष्टि के समय का आधार तुम हो, सृष्टि के स्थिति का आधार तुम हो, प्रकृति का आधार तुम हो। एक ऐसी ऊंची ऊंची बातें है सब, हायर कॉन्शियसनेस वाली, इसको स्वीकार करने के लिए भी टाइम लगता है। हम तो अपने ही दुखों में डूबे हुए मीरा रोए चुपके चुपके, मेरे दर्द न जाने कोई, मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरी बहन को ठीक कर दो, मेरे पिता को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक करो शिव बाबा, मेरे भाई का इंटरव्यू में पास हो जाए, मुझे जॉब लग जाए, मेरा जीवन निर्विघ्न हो जाए, सेंटर के मेरे सारे विघ्न समाप्त हो जाए, मेरा सेंटर बढ़ जाए, मेरा सेंटर रिट्रीट सेंटर बन जाए, गीता पाठशाला सेंटर, सेंटर रिट्रीट सेंटर, मैं इंचार्ज बन जाऊं, मैं हेड बन जाऊं, मैं पास हो जाऊं। हम तो अपने ही दुख दर्द और पीड़ा और इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाओं में डूबे हैं, और भगवान कह रहा है तुम पूर्वज हो, तुम पूजनीय हो, तुम गायन योग्य, तुम सृष्टि के बीज हो, तुम सृष्टि के तना हो, तुम सृष्टि के समय का आधार हो, सृष्टि के स्थिति का आधार हो, तुम प्रकृति का आधार हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तुम आधार मूर्त हो। इधर से सुना, इधर से गया, इधर से सुना, इधर से गया, ये चल क्या रहा है, ये किसको कह रहे है? पीछे मुड़ के तो देखो, कोई दूसरा तो नहीं है पीछे, कोई धर्मस्था, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध विद्ध, उनको शायद कह रहे, उनके भी तुम पिता हो, उनके भी तुम आधार हो। और क्या कहा, ये अगर तुमको स्मृति रहेगी तो क्या होगा, ऐसी स्मृति में रहने से सदा ही अटेंशन रहेगा। ये सोचो ही नहीं मैं अकेला हूं, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड। ये सारी सृष्टि जो है मुझसे जुड़ी हुई है, मैं और सृष्टि अलग अलग नहीं है, द वन यूनिवर्सल माइंड। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, हमको ऐसा कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं दिया जाए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या आती है, पावर ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा पावर मिली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, टेंशन ज्यादा आती है। बॉस दिखता है अकेला ऑफिस में बैठा रहता है, करता कुछ नहीं, पर सबसे ज्यादा काम वही कर रहा है। साधारण व व्यर्थ संकल्प कर्म नहीं होगा, सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी, पांच विकार और पांच तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे। तो ये याद करते रहना है, सोते समय, उठते ही, मेडिटेशन में, चलते फिरते, जब अपमान हो रहा है, जब निंदा हो रही है, जब ग्लानी हो रही है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, तो याद क्या करेंगे, मैं पूर्वज हूं, मैं बीज हूं, गायन, ये मेरा गायन हो रहा है, ये कमेंट्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कमेंट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स। आहा, ये मेरे क्या करे, चरण धो रहे, फूल मालाएं पहना रहे, जैसे श्री राम जी आते हैं और केवट उनको मिलता है, केवट कहता है, राम जी कहते हैं चलो हमको ले चलो, गंगा पार कराओ। केवट कहता है मैं नहीं कराऊंगा जब तक मैं आपके चरण ना धो लूं। वो कहता है नहीं, आप मेरे से उम्र में भी बड़े हो, भाई जैसे हो, बड़े भाई जैसे हो, मैं नहीं धुलवाऊंगा चरण। वो कहता है नहीं, तुमको धोना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं। लक्ष्मण कहता है, बोल रहे हैं ना वो, अब मानो चुपचाप बोल दिया ना एक बार नहीं धुलवाएंगे, तो यू हैव टू एग्री। ही सेड नो, मेरा मुख्य कारण है, क्या कारण है बताओ। वो कहता है खतरा है। क्या खतरा है? वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में माया है, तुम जिसको हाथ पैर लगा देते हो पत्थर को, स्त्री बन जाती है। अगर तुमने मेरे मेरी नाव में बैठ गए और वो स्त्री बन गई, तो पहले बात दो प्रॉब्लम्स है, एक तो मेरे रोजगार का क्या होगा, और दूसरा एक पत्नी पहले से घर पे है, ये दूसरी पत्नी खड़ी होगी। तो ऐसे वो युक्ति से कमांडिंग ऑफिसर भी शांत, लक्ष्मण। तो गायन योग्य तुम हो, पूजन योग्य तुम हो, पूर्वज तुम हो, तना तुम हो, बीज तुम हो, सृष्टि के आधार तुम हो, उद्धार मूर्त तुम हो, समय का आधार तुम हो, स्थिति का आधार तुम हो, प्रवृत्ति का आधार, प्रकृति का आधार तुम हो, और कर्म का आधार तुम हो, मर्यादा कुल की मर्यादा तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो। तो मुरली को क्या करना है, उसमें से पॉइंट्स निकाल लेने, उसको प्लॉट करना है और उसको देखना है और रिवाइज करते रहना है। ये याद कैसे रहेगा, दूसरों को सुनाने से। कोई मिले तो उसको कह देना बीच में, कर्म का आधार तुम हो, कुल की मर्यादा तुम हो, रीति रस्म का आधार तुम हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तुम आधार मूर्त हो। छोटे छोटे बच्चे अगर मिल गए ना, उनको भी सिखा देना हम इधर से वो उधर से। तो बाबा ने कहा ये सब याद रखोगे तो क्या क्या होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, अटेंशन रहेगा, अपोजिशन माया का खत्म हो जाएगा, माया नमस्कार करेगी, और पांच विकार पांच तत्व दास बन जाएंगे। तो ये है सेकंड मुरली। अब आ जाओ थर्ड मुरली। थर्ड मुरली में 10 नहीं 11 है ना, 11। तो ये प्रश्न है आपको दे रहे, उत्तर आप बताओ। मुरली बंद, संकल्प की शक्ति क्या क्या कर सकती है, ये भी एक मेथड है। किसी और व्यक्ति को कहो, आपका कोई साथी, कोई दोस्त, कोई सहयोगी है, उसको कहो इस मुरली से प्रश्न निकाल लो और आपको दे दे। आप पहले प्रश्न पढ़ना, चिंतन करना, और मुरली बाद में पढ़ना। तो 10 प्रश्न आपको पूछ रहे, बताओ संकल्प की शक्ति क्या क्या कर सकती है? असंभव को संभव कर सकती है, और मुश्किल को आसान, और ज्ञानी तो सभी है, सभी उत्तर सबके पास, एक एक के पास दस दस उत्तर हो सकते हैं, फिर देखना मुरली में क्या कहा है। ठीक है, एकाग्रता की परिभाषा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। एकाग्रता बढ़ाने के लिए दो बातें क्या है? परखना, निर्णय, और एकांत, अंतर्मुख, ये ज्यादा नजदीक है। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? विघ्न आते तो घबरा जाते हैं, डर लगता है मेरा क्या होगा। चार लोग एकदम विरोध करने आ गए, धड़कन तेज, फेस करने की पावर नहीं है, अविश्वास है, निर्णय शक्ति कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। चार लोगों ने अगर हम जो कर्म कर रहे हैं उसका विरोध कर दिया तो हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर डगमग होने लगते हैं, शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। जीवन में आने वाली परीक्षाओं के लिए बाप का महावाक्य क्या है? परीक्षाओं के लिए बाबा का महावाक्य क्या है? जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। बाबा ने ये तो कभी कहा ही नहीं है कि माया नहीं आएगी, रादर क्या कहा है? और ही आएगी, और ही होगा, क्योंकि तुमने तुमने एंट्री कहाँ की है? यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, युद्ध के मैदान में एंट्री की है तुमने, और वहां बैठ के सोच रहे हो कि मुझे पर मेरे पर कोई आक्रमण ना करे, मैं एकदम ठीक रहूं। तुमने एंट्री की है कांटों के जंगल में, ओखली में सर दिया है, और फिर एक्सपेक्ट करते हो ऊपर से मूसल ना आए, हाउ कम? तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ने का साधन है ना, ना कि गिरने का। ये परीक्षाएं तो आगे बढ़ाती है, परीक्षाएं तो परिपक्व बनाती है, कांटों पे चलकर ही तो मजबूत होते हैं, पार ले जाती है परीक्षाएं। इसलिए घबराना नहीं, उसको पार करना है। अगला प्रश्न, व्यर्थ संकल्प की क्यों क्यों लगती है, इसमें मुख्य कमजोरी क्या है? अगला प्रश्न, वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण क्या है? संबंधियों से आने वाली परीक्षाओं के प्रति बच्चे क्या कहते हैं, और बाप दादा का क्या डायरेक्शन है? संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली। बाप दादा ने तो पहले ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्मा है और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं का एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता, सबका एक जैसे कैसे हो सकता? मंथरा इज नीडेड, कंपल्सरी है मंथरा, ऐसे लोग जरूरी है कि जिनको सुख शांति देखी नहीं जाती है जरूरी है, कई कई चाहिए, सभी सुमित्रा और कौशल्या नहीं, कई कई आवश्यक है, कई कई नहीं तो निखार लाया राम के चरित्र में। सबसे पहले कई कई को प्रणाम, बाद में बात बाकियों को, बाद में पुरुषोत्तम राम हो गया। तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण क्या है? संबंधियों की बुद्धि का ताला खोलने का साधन क्या है, ये बताओ आप। पति को ज्ञान में लाओ, पत्नी को ज्ञान में लाओ, बहन को ज्ञान में लाओ, भाई को ज्ञान में लाओ, क्या करेंगे चिमन भाई? संबंधियों की बुद्धि का ताला खोलने के लिए। हाँ, शुभ भावना, अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। कौन से मुख्य तीन बातें बाप बार बच्चे बार बार लिखते और कहते हैं? तीन कंप्लेंट्स बाबा की बच्चों की, योग नहीं लगता, ताला नहीं खुलता, माया क्यों आती है, पहले ये बताओ, बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है प्रश्न? तो बीच के जो 6 दिन है वो थोड़ा प्लान चेंज कर रहे हैं, 6 दिन रिवाइज करेंगे। 46 मुरलिया, 76 की 77 की ये जो 46 मुरलियां है वो बीच के जो 6 दिन है 23 से लेके तो 28 तक रिवीजन होगा। 29th को एग्जाम होगी, 30 तारीख को एग्जाम के प्रश्नों का रिवीजन होगा, 50 प्रश्नों का, पर एग्जाम में 25 ही प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में फिर 1 तारीख से 1980 की भट्टी चालू होगी, 17 दिन की 17 मुरलियां सबके द्वारा। और फिर हम उसके बाद एक बच्चों का सेशन लेंगे 12 दिन का सुपर किड्स, 17 दिन ग्रुप मेंबर्स। हाँ हाँ, सुपर किड्स में सुपर किड्स में सुपर ट्रॉफी, सुपर मेडल, तो वो अलग। उसके बाद में फिर आगे और देखेंगे वो पूरा महीना। और फिर अगले महीने का एमएट 8 होगा, फिर 80 का 17 मुरलियों पर। तो रोज एक ही मुरली होगी, यहां जो सुनाई जाएगी उसी पर टेस्ट होगी। अभी मुरली और टेस्ट कहीं और, तो रिवीजन कुछ और, इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है थोड़ा तो परंतु 17 मुरलियां है और रोज यहां जो मुरली होगी उसी पर टेस्ट होगी। तो जो मुरली चलाने वाला है, रिवीजन कराएंगे, उसको लक्ष्य रहेगा उसको भी पासिंग मार्क मिले। पेपर की डिफिकल्टी वो होगी पार्टी मुलाकात नहीं, पार्टी मुलाकात आउट वो अपना, परंतु डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि एक ही दिन में एक ही मुरली है और वो भी यहां रिवाइज होगी, वो भी रीडर्स क्लब में भी रिवाइज होगी, तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगी। हाँ वो भी वही आएगा, एमएट में 17 मुरलियों का एमएट, केवल 17, 1980 का 30 तारीख को एमएट 8 और 31st को, अक्टूबर 31st को उसका रिवीजन। हाँ वही लास्ट में, और हर दिन भी वही। हाँ तो कितना रिवीजन हो रहा है, घोटने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। हर दिन पहले तो रीडर्स क्लब में एक मुरली रिवाइज होगी, दूसरे दिन यहाँ रिवाइज होगी, अगले उसी दिन उस पर टेस्ट होगी, और पूरा 17 होने के बाद में बीच में गैप है 14 दिन का, 12 दिन, 12 14 12 दिन का गैप और फिर टेस्ट। किस पर? उन्हीं 14 दिन का गैप और उसी 17 मुरलियों पर टेस्ट, पर डिफिकल्टी लेवल फिर अभी सुना ना, छोटी छोटी आशाओं को टूटना पड़ेगा। हमें पास होना है बिना एग्जाम दिए, बिना पढ़े। किसी को गीत गाना था ना, तो आज ये 3 मुरलियां है, 10 प्रश्न भेजेंगे, उस 10 प्रश्नों को पढ़ना एक बार फिर से, मुरली बाद में पढ़ना शाम को, पहले पढ़ना और उत्तर लिखो अपने चिंतन से, फिर मुरली पढ़ लेना, एक ही है। दूसरा होमवर्क बताया है, ये पॉइंट सारी कितनी है, ये 14 है क्या, 14 समान। और फिर उसके बाद पहला बताया लगाओ और दूसरा श्रीमत, तो वो जो श्रीमत वाला है उसको रिवाइज कर लेना, और कल आशीष भाई आप यहाँ रिवाइज कराओगे हिंदी में विथ एक्शंस एंड नेपाली में भी फिर एक्शंस के साथ। होमवर्क ही है, यही सब होमवर्क है, यही ले लो। मेडिटेशन कराया था बाबा वाला, उसको बीच बीच में करते रहना है। अव्यक्त मुरली की किताब वाला, अव्यक्त मुरली, आकाश को देखो अव्यक्त मुरली देखो, उसमें किरणें आ रही है, संसार की आत्माओं को देखो, हर एक के हाथ में मुरली है, वो पढ़ रहे हैं, श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे हम, और फिर सारे दिल जुड़ रहे, स्टार बन रहा है, और किरणें और ह्यूमैनिटी को इस मानवता का मार्गदर्शन हो रहा है, और लास्ट प्रार्थना सर्व आत्माओं के लिए। तो ये भी मेडिटेशन करते रहना है। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति। ये गीत 7 मिनट का है, लेकिन इसको ऐसा किया है कि ये गीत सुनते सुनते हम अपनी दीदियों के प्रति, जो निमित्त दीदियां है ना, तो उनके प्रति जो हम कृतज्ञता भाव है वो व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही कल अमृत वेले बाबा की टचिंग आई, तो संकल्प रखा था, तो ये आपके सामने, और इसमें ही सारा परिचय जो भी है वो आ जाएगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप दीदियों का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इस शरीर का नाम स्वप्निल भाई है। बचपन में दरियापुर में सुलभा दीदी के द्वारा ज्ञान में जन्म हुआ। खामगांव में शकुंतला दीदी जी ने ज्ञान दूध पिलाया और स्कूल की छुट्टियों में यवतमाल के सेंटर की मंगला दीदी जी ने खूब बहलाया। और नागपुर में भी हम जाते थे तो पुष्पा रानी दीदी जी के द्वारा भी 7 डेज कोर्स करवाया। तो उन सभी के लिए आगे का
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिन उंगली है बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या करें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप दीदियों का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
नामे सदाशिव पेट में लता दीदी जी ने हमें संगम युग पर अव्यक्त बाप दादा से मिलवाया और जिन्होंने शिवानी दीदी को जन्म दिया वो पुणे जीपीओ सेंटर की उर्मिला दीदी जी ने हमें ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा का चांस दिया।
जन्म देती है जो माजी से जग के हैं, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख से है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप दीदियों का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
और वर्तमान समय उल्लासनगर महाराष्ट्र मुंबई सेंटर में हमारी दो दीदियां हैं, ब्रह्मा बाबा की पालना ली हुई सोम दीदी जी और उनकी राइट हैंड पुष्पा दीदी। दो हंसों का जोड़ा है, एक हंस में शक्ति अपार है, एक है शांति का अवतार। पुष्पा दीदी है ज्ञान और सेवाओं का दरिया, तो सोम दीदी जी ने किया है ब्रह्मा बाबा का दीदार।
आपके ख्वाब हम आज होकर जवा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप सब ही सलामत रहें, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप दीदियों का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप दीदियों का उस विधाता की पहचान है।
और आप भी अपने अपने दीदियों को याद कर लेना जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया है।